स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय परंपराओं की दुनिया में थोड़ा झांक रहे हैं और खास तौर पर संस्कारों पर।
जी,
हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें कई अलग अलग संस्कारों का जिक्र है, तो आज हम श्रोताओं की रुचि को ध्यान में रखते हुए पुंसवन संस्कार और मानव जीवन में उसकी क्या महत्ता बताई गई है, इसे थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल।
देखिए, संस्कार का जो मूल मतलब है ना, वो है परिष्कार या शुद्धि।
अच्छा।
इसको ऐसे समझिए जैसे कोई मूर्तिकार एक साधारण पत्थर को तराश कर एक सुंदर मूर्ति बना देता है।
हाँ, सही।
तो संस्कार भी व्यक्ति को आप कह सकती हैं ज्यादा सभ्य सुसंस्कृत बनाते हैं, विवेकशील बनाते हैं, उनकी जो अंदरूनी शक्तियां हैं उनको जगाते हैं। तो स्रोतों का उद्देश्य साफ है, इंसान के अंदर जो सर्वोत्तम संभावनाएं हैं उनको विकसित करना।
और इसी सिलसिले में आता है ये पुंसवन संस्कार। तो हमारे स्रोतों के हिसाब से गर्भ में पल रहे शिशु के लिए इस संस्कार का क्या खास उद्देश्य या क्या महत्व बताया गया है? हाँ, तो पुंसवन संस्कार जो है वो मुख्य रूप से गर्भ कन्फर्म होने के बाद और आमतौर पर तीसरे महीने तक किया जाता है।
तीसरे महीने तक?
जी। और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो है गर्भस्थ शिशु का स्वस्थ मानसिक और कह सकते हैं बौद्धिक विकास सुनिश्चित करना।
अच्छा।
ये एक तरह से शिशु के जीवन की जो नींव है उसको एक पॉजिटिव दिशा देने का पहला सचेत प्रयास है। इसीलिए मानव जीवन के इतने शुरुआती पड़ाव पर इसका इतना महत्व माना गया है।
पर ये तीसरे महीने तक ही करने पर इतना जोर क्यों दिया गया है? क्या श्रोत बताते हैं कि इस टाइम लिमिट के पीछे कोई खास वजह है?
हाँ हाँ, श्रोत बताते हैं। उनका कहना है कि तीसरे महीने के बाद गर्भ में शिशु के जो अंग हैं और उसका जो मानसिक ढांचा है वो एक निश्चित रूप लेना शुरू कर देता है।
अच्छा।
इसीलिए ये जो जरूरी वक्त है इससे पहले संस्कार कर लेना जरूरी माना गया है, ताकि शिशु के विकास पर एक पॉजिटिव और कहिए रचनात्मक असर डाला जा सके। इसे आप जीवन की शुरुआत में ही एक तरह का आध्यात्मिक और मानसिक पोषण, उसकी पहली खुराक कह सकते हैं।
ये दिलचस्प है कि स्रोत सिर्फ बाहरी माहौल नहीं बल्कि माता पिता की जो अंदरूनी स्थिति है उस पर भी इतना जोर दे रहे हैं। अच्छा, इसी से जुड़ी एक विधि है औषधि अवघ्राण। ये क्या प्रक्रिया है और इसका क्या महत्व बताया गया?
हाँ, औषधि अवघ्राण, इसमें तीन खास वनस्पतियों का जिक्र है। वट वृक्ष मतलब बरगद की जटाओं का जो मुलायम हिस्सा होता है वो, पीपल के नरम पत्ते और गिलोय के तने का रस या पाउडर।
अच्छा।
इसे गर्भवती स्त्री के दाहिनी नासिका मतलब राइट नॉस्ट्रिल में सुंघाने की विधि है। पर ये सिर्फ जड़ी बूटियां नहीं है।
हाँ।
ये एक सिंबॉलिक प्रयास है शिशु के चरित्र निर्माण की नींव रखने का। स्रोत बताते हैं कि इनके संपर्क से बच्चे में बरगद जैसी मजबूती और विशालता, पीपल जैसी पवित्रता और जीवन शक्ति, और गिलोय जैसी आरोग्य देने वाली और ऊपर उठने की प्रवृत्ति मतलब विकास की तरफ बढ़ने की प्रवृत्ति के बीज बोने की कामना की जाती है। जीवन की शुरुआत में ही इन गुणों को सींचना, यही इसका महत्व है।
तो मतलब ये सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं है बल्कि बच्चे के पूरे व्यक्तित्व को गढ़ने की एक गहरी सोच है।
बिल्कुल।
इसी सिलसिले में गर्भ पूजन का भी जिक्र है, इसका क्या मतलब हुआ?
देखिए, गर्भ पूजन सिर्फ एक पूजा या रिचुअल नहीं है, ये असल में माता पिता को गर्भ में पल रहे शिशु के प्रति उनकी जो गहरी जिम्मेदारी है उसका एहसास कराता है।
अच्छा।
स्रोत ये मानते हैं कि माता पिता क्या सोचते हैं, उनका बर्ताव कैसा है, यहाँ तक कि घर का माहौल कैसा है, ये सब गर्भस्थ शिशु को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। इसीलिए इस पूजन के जरिए घर को मंदिर जैसा शांत, पवित्र और सकारात्मक बनाने पर जोर दिया जाता है। अच्छी किताबें पढ़ना, नियमित साधना उपासना करना, ताकि शिशु पर सिर्फ अच्छे शुभ प्रभाव पड़े।
हाँ, ये बात तो समझ आती है कि कैसे बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह की पवित्रता को महत्व दिया गया है। अच्छा, इसी से जुड़ा शायद आश्वासन का भी जिक्र है, इसमें परिवार की क्या भूमिका है?
आश्वासन, हाँ, ये एक तरह का सामूहिक संकल्प है, एक वादा।
वादा? कैसा वादा?
इसमें गर्भवती स्त्री खुद ये वचन लेती है कि वो अपने विचारों को, अपने खान पान को, अपने दिनचर्या को सकारात्मक रखेगी, और साथ ही पति और परिवार के जो बाकी सदस्य हैं वो भी ये भरोसा दिलाते हैं कि वे घर में प्यार भरा और शांत माहौल बनाए रखेंगे।
अच्छा।
गर्भवती स्त्री का पूरा ध्यान रखेंगे और खुद भी ऐसा आचरण करेंगे जो अनुकरणीय हो, मतलब जिसे देखकर सीखा जा सके। इसका सीधा महत्व है शिशु के भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, उसे गर्भ में भी एक सुरक्षित और प्रेम भरा माहौल देना।
स्रोत चरु प्रदान यानी एक खास खीर खिलाने की बात भी करते हैं और राजा दशरथ का उदाहरण भी देते हैं, इसका क्या महत्व है?
सात्विक, पौष्टिक और आसानी से पचने वाली मानी जाती है
जी।
इसके जो तत्व हैं जैसे दूध, वो पवित्रता और पोषण का प्रतीक है। चीनी मिठास और स्नेह का, चावल अटूट निष्ठा और पूर्णता का। और राजा दशरथ की कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे यज्ञ से मिले इसी दिव्य चरु मतलब प्रसाद के जरिए उन्हें राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जैसे श्रेष्ठ पुत्र मिले थे।
हाँ, वो तो प्रसिद्ध कथा है।
तो भाव ये है कि श्रद्धा से ग्रहण किया गया सात्विक भोजन न सिर्फ माँ को पोषण देता है बल्कि गर्भ में पल रहे शिशु में भी अच्छे गुणों के विकास में मदद करता है। ये दिखाता है कि आहार का संतान की गुणवत्ता पर कितना गहरा असर होता है।
वाह, मतलब इसमें तो खानपान से लेकर आचरण और माहौल तक हर पहलू शामिल है। और अंत में संकल्प की बात आती है, ये क्यों जरूरी है?
संकल्प, हाँ, ये इस पूरे संस्कार का सार है, निचोड़ है। ये सिर्फ कोई रस्म अदायगी नहीं है।
अच्छा।
संकल्प के जरिए माता पिता और परिवार वाले ये दृढ़ निश्चय करते हैं कि वो शिशु के सबसे अच्छे विकास के लिए जो भी बातें बताई गई हैं, जैसे पॉजिटिव सोच, सात्विक खाना, नियमित स्वाध्याय, शांत माहौल, उन सब का पूरी निष्ठा से पालन करेंगे। ये एक मानसिक कमिटमेंट है।
हाँ।
जो इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ एक दिन के अनुष्ठान तक सीमित नहीं रखता बल्कि इसे जीवन जीने का एक तरीका बना देता है और यही इसके गहरे महत्व को दिखाता है।
तो अगर इन सब बातों का सार निकाले तो पुंसवन संस्कार एक तरह की प्राचीन होलिस्टिक पद्धति है जिसका लक्ष्य जन्म से पहले ही शिशु का पोषण करना है ना?
बिल्कुल।
ये माता पिता के आचरण, खास अनुष्ठानों और एक सकारात्मक माहौल के जरिए बच्चे के शारीरिक, मानसिक और आप कह सकते हैं आध्यात्मिक विकास पर फोकस करता है। और इसकी सबसे बड़ी महत्व शायद इस बात को पहचानने में है कि इंसान के जीवन पर उसके जन्म से पहले के चरण का कितना गहरा और निर्णायक असर पड़ता है।
आपने बिल्कुल सही समझा। स्रोत बताते हैं कि भ्रूण के विकास के लिए खास जड़ी बूटियां, अनुष्ठान और मानसिक अवस्थाएं कितनी जरूरी हैं। हो सकता है ये तरीके हमें पारंपरिक लगें, पर इनके पीछे जो सिद्धांत है वो एक शाश्वत सवाल खड़ा करता है।
क्या सवाल?
कि गर्भावस्था के दौरान हमारे जो सचेत इरादे होते हैं, हमारे काम, हमारा माहौल, वो असल में अंदर पल रही जीवन की क्षमता और उसके भविष्य को किस हद तक कितनी गहराई से आकार देते हैं। ये सोचने वाली बात है कि आज के आधुनिक दौर में कौन सी प्रथाएं या मान्यताएं हैं जो जाने अनजाने में जन्म से पहले पोषण पर इस प्राचीन समझ को दर्शाती हैं।
वाकई ये एक बहुत गहरा विचार है और इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।